काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में ध्वन्यांकित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, लेखक महाकवि कालिदास, संपादक डॉ. कृष्णभूषण मिश्र, प्रकाशन केंद्र चौखंभा प्रकाशन, वाचक अभिनीत कुमार श्रीवास्तव। भूमिका: स विश्ववंद्यो महताम कवीनाम गुरुर्मनीषी कवि कालिदास यस्काव्य पीयूष रस प्रवाह स्वादामितानंदमयो हि लोकः। कवि कलाधर कविवर कालिदास भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कृतियों में हमारे संस्कृति के प्राण तत्व सुरक्षित हैं। वस्तुतः भारतीय दार्शनिक मनुष्यों ने सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसंधान में जो बहुमूल्य मणिरत्न प्राप्त किए हैं, वे सभी कालिदास की रचनाओं में सन्निविष्ट हैं। भारतीय संस्कृति ने जिन मूल्यों को अपनी साधना एवं अनुभव के आलोक में प्रतिष्ठित किया है, उनकी मंजुल व्यंजना इनके काव्यों में रक्षित है। कालिदास की महत्ता: न केवल भारतवर्ष में ही अपितु सारे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में कालिदास का सर्वोच्च एवं प्रमुख स्थान माना गया है। विश्व की किसी भी भाषा का कोई भी कवि अभी तक कालिदास की बराबरी नहीं कर पाया है। इनके अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की नाट्यकला पर मुग्ध होकर एक जर्मन आलोचक ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करना अपनी अज्ञता का परिचय देना है, क्योंकि यदि शेक्सपियर के सारे नाटक एक तरफ रख दिए जाएं और कालिदास का एक ही नाटक अभिज्ञान शाकुंतल दूसरी तरफ रख दिया जाए, तब भी शेक्सपियर के सारे नाटक कालिदास के एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जर्मन भाषा में शकुंतला का अनुवाद देखकर महाकवि गेटे ने आनंद विभोर होकर इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि यदि स्वर्ग एवं मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो शकुंतला। यद्यपि संस्कृत साहित्य के काव्य संसार में माक, भारवी, श्रीहर्ष, सुबंधु, दंडी, बाण, भास, भवभूति आदि बहुत से विद्वान हुए जिनकी कीर्ति कौमुदी दिग दिगंतर में व्याप्त हैं एवं जिनकी विलक्षणा कविता प्रलय परंत सहृदयों के सरस हृदय को नवीन ज्योति प्रदान करती रहेगी तथा इनमें जैसी अद्भुत कल्पना की छटा तथा काव्य कला दिख पड़ती है, वैसी अन्य कवियों में नहीं। कालिदास के ग्रंथों को देखकर निसंकोच कहना पड़ता है कि ये सभी कवियों में शिरोमणि हैं। इनकी कविता की प्रशंसा करते हुए एक आलोचक ने ठीक ही कहा है: महिष्यम दधि सशर्करम पह कालिदास कविताम नवम वयः शारदेन्दुरबला च कोमला स्वर्गशेषम उपभंजते जनाः। शुद्धल कवि ने अविंति सुंदरी कथा में कहा है कि धन्य है कालिदास जिनकी कीर्ति कविता के समान दोष रहित और अमृत तुल्य और मधुर है। इनकी वाणी जैसे सूर्यवंश का वर्णन कर सकी है, वैसे ही इनकी कीर्ति भी समुद्र के पार पहुंच चुकी है। ख्यातः कृति सोपि च कालिदास शुद्धा सुधा स्वादुमति च यस्य वाणी मिषांड च मरि चिगोत्र सिंधो परम पारम वापह कीर्ति। संस्कृत साहित्य में कालिदास के काव्यों में रस, माधुर्य, कोमल भाव और साभिप्राय वर्णन अद्वितीय है। इनको अद्वितीयता के संबंध में किसी मर्मा के आलोचक ने बड़े ही सुंदर कल्पना की है: पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठा काधिष्ठ कालिदास अद्यापि ततुल्य कवेर भावादिनामिका सार्थवती बभूव। किसी समय जब श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी, तब सबसे पहले कालिदास को सर्वप्रथम स्थान देकर उनका नाम कनिष्ठ अंगुली पर रखा गया। बाद यह विचार उपस्थित हुआ कि द्वितीय स्थान किस कवि को दिया जाए, पर कालिदास जैसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि के न रहने कारण दूसरी अंगुली अनामिका पर किसी कवि का नाम पड़ा ही नहीं, इसलिए अनामिका का नाम सार्थक हो गया, अर्थात यह बिना नाम की ही रह गई। गणना की स्वर्णभूति पद्धति यह है कि कुछ गिनते समय पहले कनिष्ठ अंगुली पर ही अंगुष्ठ को रखते हैं, बाद में अनामिका, मध्यमा तथा तर्जनी। कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय महाकवि हैं। इनकी कविता की मधुरिमा के सामने अन्य कवियों की कविता फीकी पड़ जाती है। आपने जैसा मानव हृदय के सूक्ष्म भावों का निरीक्षण किया है, वैसा अन्य कवियों ने नहीं। कालिदास अनंतर तथा वाह दोनों जगत के सूक्ष्म निरीक्षक महाकवि हैं। कालिदास का जीवन वृत्त: कालिदास ने अपने जीवन के संबंध में अनेक ग्रंथों में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, किंतु प्राचीन विचार परंपरा के अनुयायी विद्वत समाज में यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि कालिदास उज्जयिनी के राजा महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में एक महारत्न थे। ये ब्राह्मण बालक हैं। जब 5-6 मास के थे तब माँ बाप चल बसे और बालक अनाथ हो गया। संयोगवश उस पर एक ग्वाले की दृष्टि पड़ी। वह उस मातृ पितृविहीन बालक को अपने घर ले जाकर पाल पोसकर बढ़ाया। बचपन में इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा था। एक स्त्री कारण इन्होंने अनमोल विद्या रत्न प्राप्त हुआ। इनकी कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है: महाराज सदानंद की पुत्री विद्योत्मा बड़ी विदुषी और सुंदरी थी। उसको अपनी विद्या का बहुत बड़ा गर्व था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि शास्त्रार्थ में मुझे जो हरा देगा उसी समय अपना विवाह करूंगी। उस राजकुमारी के रूप, यौवन और विद्या की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से विद्वान आते थे, पर शास्त्रार्थ में उससे पराजित होकर चले जाते थे। जब विद्वानों ने देखा कि यह राजकुमारी किसी प्रकार भी वश में नहीं आती है, सबको हरा देती है, तब उसकी विद्वता से लज्जित होकर सभी ने राय किया कि किसी ढंग से इसका विवाह ऐसे महामूर्ख से करा दिया जाए जिससे यह जीवन भर अपने अहंकार पर पश्चाताप करती रहे। परिणाम स्वरूप वे लोग एक मूर्ख की खोज में पड़ गए। एक दिन कहीं रास्ते में जाते हुए देखा कि भेड़ चराने वाला एक आदमी पेड़ के ऊपर जिस डाल पर बैठा है उसी को जड़ से काट रहा है। विद्वानों ने उसे देखकर समझा कि बहुत बड़ा मूर्ख है, इसी से विद्योत्मा का विवाह हो जाए तो अच्छा है। बाद बड़े प्रेम से उसे नीचे बुलाया और कहा कि चलो हम लोग तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ करा देंगे, पर देखना राजसभा में मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, जो कुछ कहना वह हमारे इशारे से कहना। लो यह धोती चादर, जामा और पगड़ी पहन लो, पंडित बनकर हम लोग के साथ चलो तो तुम्हारा विवाह जरूर करा दिया जाएगा। इस प्रकार पंडितों की बात पर विश्वास कर वह मूर्ख पंडित बनकर राजसभा में पहुंच गया। पहले से ही उपस्थित विद्वानों ने उसका खूब सत्कार किया और उसे सबसे ऊंचा आसन पर बैठा दिया। बाद में विद्युत्मा से कहा कि बृहस्पति के समान काशी के दिग्गज विद्वान हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, किंतु इस समय ये तपस्या करने कारण मौन व्रत लिए हैं। शास्त्रार्थ में आपको जो कुछ कहना हो संकेत से कहिए। यह सुनकर राजकुमारी ने अपने मन से यह सोचकर कि ईश्वर एक है उंगली उठाई। इधर मूर्ख ने समझा कि यह उंगली दिखाकर मेरी एक आंख फोड़ने का संकेत कर रही है, इसलिए उसकी दोनों आंखों को फोड़ने के अभिप्राय से अपनी दो उंगलियों को उठाया। इस पर विद्युत्मा के विरोधी उपस्थित विद्वानों ने इसका यह अर्थ लगाया कि यह संकेत कर रहे हैं कि आत्मा एक नहीं है किंतु दो है, एक जीवात्मा है तथा दूसरा परमात्मा। विद्वानों के इस कुचक्र के परिणाम स्वरूप उस राजकुमारी को उससे हार मानकर पूर्व में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपना विवाह उस महामूर्ख ब्राह्मण कुमार के साथ लेना पड़ा। रात के समय एकांत में जब दोनों का मिलन हुआ, तब तक किसी तरफ से एक ऊंट चिल्ला उठा। राजकुमारी ने पूछा कि कौन शोर मचा रहा है। इस पर उस मूर्ख ने उत्तर दिया कि उट्र चिल्लाता है। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा कि कैसा शोर है, तब वह उष्ट्र के बदले उट्र बोलता है ऐसा कहने लगा, क्योंकि वह जन्म से महामूर्ख था, उष्ट्र का शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकता था। बात विद्युत्मा को पंडितों की धूर्तता का पता चला। इस पर वह पश्चाताप करती हुई फूट फूट कर रोने लगी। बात अत्यंत दुखी होकर उस मूर्ख को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि यदि तुम विद्वान होकर आओगे तो मेरे साथ तुम्हारा संबंध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार भर्सना देकर विद्योपार्जन के लिए अनुप्रेरित किया। इधर वह मूर्ख भी इस व्यवहार से बड़ा ही लज्जित हुआ। पहले तो सोचा कि अपना प्राण दे दूंगा, फिर सोच समझ कर विद्योपार्जन में परिश्रम करने लगा। भगवती काली की उसने बड़ी उपासना की, फलस्वरूप देवी की कृपा से थोड़े दिनों से वह तक एक ऐसा प्रतिभाशाली विलक्षण विद्वान हो गया कि जिसका नाम संस्कृत साहित्य तथा विश्व के इतिहास में अजर अमर हो गया। सच है, सच्ची लगन से क्या नहीं हो सकता। यही है हमारे चरित नायक कविवर कालिदास, जो उपासना द्वारा भगवती काली की कृपा से अब प्रतिभा संपन्न महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए।